मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसव संत नमो हरि रामामुर भवन में या पद समान को अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अब कृपा मोह पर करहु यो हरिदेव कहंत। सदगुरु से देवी नदी पर ब्रह्म सू परनाम अनंत कोटि संत रामदास निषदिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल कर्ण रामदास आनंद।
1 जनवरी 1946 जन्म ही नहीं हुआ हमारा। सेठ जी ने कहा 20 वर्ष पहले मेरे में श्रद्धा रखने वालों को लाभ होता है इसका मुझे पता है और आज लोगों में मेरे प्रति श्रद्धा करने वालों को लाभ नहीं होता है यह भी जानता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे में यदि कोई कमी आई हो तो आप लोग मेरे मित्र हैं मुझे खुलकर बता सकते हैं। श्रद्धा करने वालों को लाभ तो उसकी श्रद्धा के कारण होता है उसमें मेरी विशेषता नहीं है। लेकिन जिनको लाभ नहीं होता है उसमें मैं मेरी कमी यदि मानता हूं तो आप लोग बताओ मेरे में क्या कमी है उस पर विचार करें। और आपको रहस्य की बात बताता हूं जो मेरी भूल कायम करता है मेरी दृष्टि में भूल न होने पर भी उसे उसकी दृष्टि से मैं स्वीकार कर लेता हूं। माने मुझे तो पता है कि मेरी भूल नहीं है पर अगला मान रहा है तो क्या पता होली भूल भूलो ही तो मैं भूल को अपने माथे पर ले लेता हूं क्योंकि जब वो कायम करता है तो मैं उसकी दृष्टि वाला ही बन जाता हूं और उसकी दृष्टि से मैं मान लेता हूं। हर आदमी में दृष्टि भेद तो रहता ही है कोई किस दृष्टि से देखता है कोई किस दृष्टि से देखता है। मैं अपनी दृष्टि से भूल नहीं मानता हूं पर अगला व्यक्ति हमारी भूल बताता है उसकी दृष्टि से मान लेता हूं कि शायद मेरे में भूल है। तो ये सब कहने का मतलब क्या है कि लोगों को अपना व्यवहार सुधारना चाहिए और इसी तरह से अपनी भूल मानकर और भूल रहित होने का व्यवहार करना चाहिए। लोग आजकल लोग भजन भी करना चाहते हैं ध्यान भी करना चाहते हैं भगवान की तरफ चलना भी चाहते हैं आत्मा का कल्याण भी चाहते हैं परंतु सबसे बड़ी कमी है अपना व्यवहार नहीं सुधारते, अपनी आदत नहीं सुधारते, अपने मन के भावों को बदलना नहीं चाहते हैं, उस भाव को वैसा ही रखते हुए काम करते हैं। हर आदमी को ये विचार करना चाहिए कि कोई आदमी यदि हमारे कारण से दुखी है तो अच्छा तो यही है कि हम उसका दुख दूर करें जैसा हमसे बस पड़े। दोबारा कहते हैं, व्यवहार सुधारना। दूसरे को यदि हमसे दुख होता है तो हमें अपनी भूल मान लेनी चाहिए कि कहीं कहीं हमारी भूल है। यदि दुख दूर नहीं करना कर सकते हो तो कम से कम भूल तो मानो। कोई आदमी मेरे से ये आशा रखता है कि मैं उसको इतना रुपया पैदा करा दूं और मैं नहीं कराता हूं मेरी दृष्टि से, परंतु दोस्त मेरा मैं मानता ही हूं कि मैंने इसको रुपया पैदा नहीं कराया। स्वभाव का दोष है तो स्वभाव को यदि नहीं सुधारेंगे तो कठिनाई आएगी। इस स्वभाव को तो किसी न किसी प्रकार से हटाना ही पड़ेगा। तो जो पहले स्वभाव को खराब करो फिर उसको हटाओ, इससे तो अच्छा है कि शुरू में ही ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये विचार करो, मेरी वाणी से और मेरी क्रिया से किसी को कष्ट तो नहीं होगा। यदि मेरी बोली से और मेरी क्रिया से किसी को दुख होता है तो फिर मैं उसके दुख को दूर करूं तो उससे क्या फायदा। पहले से ही ध्यान रखो। इतनी बड़ी गीता प्रेस है, इसकी शाखाएं हैं, पर एक भी आदमी मेरे कुटुंब का, मेरे कुटुंबियों के संबंध का या मेरे लिहाज का मैंने रखा है क्या? यदि ऐसा है तो आप खुल करके बताओ। ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, परंतु क्या किया जाए, आप लोग सुधरते नहीं हो इसलिए कहा जाता है। अपनी बड़ाई कौन करे। मैं शर्मिंदगी महसूस करते हुए ये बात बोल रहा हूं कि मैंने गीता प्रेस में कभी अपने लिहाज का आदमी नहीं रखा। देखा जाता है अंत काल में भगवान की स्मृति रखते हुए मरने वालों का कल्याण हो जाता है। उसमें क्यों होता है हर आदमी इसका रहस्य नहीं समझता। वो इसलिए होता है कि वहां विशेष रूप से उसका कल्याण करने की जिम्मेवारी भगवान अपने पर लेते हैं। वो भगवान के कारण से कल्याण होता है। अब कोई कहे कि हम अंतकाल के बिना जो राम राम करते हैं, भजन करते हैं, तो ठीक है, पर अंतकाल में भगवान कुछ बहुत रियायत देते हैं। उस रियायत के लाभ से अंतकाल में जल्दी कल्याण होता है। भगवान की अहेतु की कृपा है, हम लोगों को निमित्त बना दिया। यदि हमको नहीं बनाते तो कोई दूसरे को बनाते। भगवान का काम किसी आदमी से अटकता नहीं है। भगवान निमित्त बनावे तो जरूर बनना चाहिए, पर अहंकार नहीं करना चाहिए कि देखो मेरे द्वारा उदय कितना बढ़िया काम हो गया। ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि देखो भगवान ने मुझे कितना बड़ा सेवा का मौका दिया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आपकी मेरे पर कितनी कृपा बरसी, मैं इसके लायक नहीं था, आपने मुझे लायक बना दिया। मैं तो अपनी तरफ से बात बोलता हूँ, मेरे में बुद्धि की बड़ी कमी मानता हूँ और व्यवहार में बहुत भूल होती है। सेठ जी कह रहे हैं, एक बार चौकसराम जी महाराज वहां पधारे ऋषिकेश, तो वहां कुछ दिन रहे तो स्वामी जी महाराज से कहा चौकसराम जी महाराज कि स्वामी जी महाराज को तो राम सुदास जी बोलते थे, उस समय इतने प्रसिद्ध भी नहीं थे, महाराज बच्चे ही थे उनके साथ, कि राम सुदास जी थे बहुत चौकी जगह आयोडा हो, मैंने देखा है जो संत होते हैं उनसे व्यवहार में भूल होती है और जो व्यवहार में चतुर होते हैं उनकी परमार्थ में विशेष पहुंच नहीं होती है, लेकिन एक जयदयाल जी गोविंद का ऐसा है जो परमार्थ में भी और व्यवहार में दोनों में बड़े निपुण हैं। अभी तक मुझे एक जयदयाल जी नजर आए और दूसरा कोई नहीं है, ये चौकसराम जी महाराज ने कहा। और सेठ जी कहते हैं मेरे में तो बुद्धि की बड़ी कमी है, व्यवहार में भूल हो ही जाती है, पर भगवान की बड़ी दया है, भगवान की दया की कोई सीमा ही नहीं है, पद पद पर दिखाई देती है। किसी किसी से कई बार मैं बात करता हूं पर अपनी बात समझा नहीं पाता, क्योंकि मेरा उच्च कोटि का व्यवहार नहीं होता, पर इससे अच्छा कैसे करूं यह समझ में नहीं आता है। जो भी काम करता हूं इसको और अच्छा कैसे करूं समझ में नहीं आता है, मन में भावना रहती है अच्छा करूं, रोज ऐसा होता है। आप लोग मदद दें तो मैं आपका शिष्य के रूप में भी मदद लेना चाहता हूं। सेठ जी बोलते आपका चेला बन जाऊं बाबा। माली लोगों की वेतन वृद्धि की मांग और उसके दिए उत्तरों का नमूना, उपनिषदों के ऊपर जो टीका लिखी जा रही है उसके ऊपर हम लोगों में जो प्रश्नोत्तर होते हैं, उस समय के व्यवहार का नमूना, जिन लोगों को उद्वेग नहीं होता है यह तो उन लोगों की दया है, उनकी श्रद्धा और प्रेम है, मेरी क्या विशेषता हुई। माने सेठ जी के जमाने में गीता प्रेस में बगीचे में कहीं हड़ताल वगैरह हो जाती थी तो सेठ जी बहुत चतुराई से सलटाते थे, तो कहते हैं इसमें मेरी क्या विशेषता हुई, अगर मेरी कोई विशेषता होती तो ये हड़ताल आदि की नौबती क्यों आती। मैं एक बात को तो सामने रखता हूं कि मेरे द्वारा किसी को उद्वेग न हो, ये मैं बहुत चाहता हूं। यस्मान नो द्युत्रे द्विजते लोको, परंतु करूं क्या, ये मेरे जीवन में उतरता नहीं है। ध्यान में तो रखता हूं कि मेरे से किसी को उद्विग्नता न हो, पर उद्विग्न हो जाते हैं, मैं क्या करूं। और लोगों से मैं उद्विग्न न हूं ये तो मेरा कंट्रोल हो सकता है, पर मेरे से कोई भी दुखी ना हो इसका मैं कैसे ठेका लेऊं। मेरे तो कोई गलती भी समझ में नहीं आती है, अच्छे से अच्छा व्यवहार करूं तो भी कोई उद्विग्न हो जाए, तो मेरे आचरण में आने में कठिनाई होती है। अब इस विषय में मैं क्या कहूं, आप जो समझे सो समझ लें, पर ऊपर से तो यही दिखता है कि उद्विग्न होता है। ये मैंने अपनी कमजोरी सुनाई है, आप इससे फायदा उठाने चाहे तो उठा सकते हो, परंतु आप लोगों को हम लोगों को मिलकर के भी फायदा उठाने की बात सोचनी है तो भगवान की दया को रख करके फायदा उठाओ। जो भी कोई फायदा दिखता है भगवान की दया के अंदर उसको जोड़ना चाहिए। लौकिक पारलौकिक सभी बातों में भगवान की दया ही दया देखनी चाहिए। मेरे प्रति कुटुंब का, स्त्रियों का, भाइयों का व्यवहार में भी मैं भगवान की दया ही समझता हूं। संसार में लोग इनको ही सुख मानते हैं। जहां मैं जाता हूं वही मकान मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं है, खाने पीने का शुद्ध सामान, हाथ का घी, हाथ का पिसा हुआ आटा सब आगे से आगे तैयार रखते हैं, कोई कष्ट नहीं है। अब मैं इसमें क्या समझूं? इसमें यही समझता हूं कि भगवान की दया ही दया भरी पड़ी है। पारलौकिक दया भगवान के उपदेश पद पद पर दिखाई देते हैं। जो कुछ भी प्रारब्धानुसार सुख दुख आकर प्राप्त होता है उसमें भगवान की दया देखनी चाहिए। लोग परिस्थिति के अंदर सुख देखते हैं, परिस्थिति में दुख देखते हैं, उसमें दया देखो। जैसे रुपया होता है, उस रुपए के ऊपर ये नकली है कि असली है तो रुपए की पहचान करने वाले रुपए का रंग रूप नहीं देखते। वो रुपए के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर निर्णय करते हैं कि ये असली है या नकली है। ऐसे हर परिस्थिति के अंदर दया देखनी चाहिए। उससे हम फायदा क्या उठाएं, इससे हमको नुकसान हो गया, ये फायदा नुकसान की बात मत देखो। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आपको संसार में जो दुख दिखाई देता है, मुझे तो वो दया ही दया दिखती है। करूं क्या? स्त्रियों की बुद्धि उल्टी है। ये लोग मानती हैं कि गहनों में, कपड़ों में, संतान में, परिवार में सुख है। खूब गहने हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। सोने चांदी के गहने, कपड़े बड़े अच्छे हो जाएंगे, संतान हमारे बहुत अच्छी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। पर अब मैं क्या कहूं? यदि अपने दिल की बात कहूं तो इनको बुरी लगे, और नहीं कहूं तो वो मेरे अंदर ही घुटने लगे। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग ये दुख पाल रहे हो, बढ़िया गहना हो, बढ़िया कपड़ा हो, बढ़िया संतान हो, ये आप दुख पाल रहे हो, इसमें दुख है। परंतु करूं क्या? समझ में नहीं आती बात। मैं तो दुख समझूं और आप उसमें सुख समझो, तो जब तक वो आपके समझ में नहीं आए तो मेरी समझ तो मेरे लिए तो काम आ सकती, आपके लिए क्या काम आए? कोई मेरी समझ को काम में लेवे तो मैं यही बताता हूं कि इसमें भगवान की दया है, इसमें आप लोग सुख मत देखो, भगवान की दया को देखो। आज लोग कहते हैं भगवान हरदम याद क्यों नहीं रहते? हरदम याद इसलिए नहीं रहते कि आपके सामने हरदम कोई न कोई परिस्थिति तो रहती है, या तो सुखदायी रहती है या दुखदायी रहती है। आप सुख दुख को ही याद करते हो, फिर भगवान की याद कैसे आएगी? यदि आप भगवान की हरदम याद रखना चाहो तो उस परिस्थिति के अंदर भगवान की दया को समझो। ये जो आप हम लोगों का जो ये सत्संग हो रहा है, ये जो बातें हो रही है, इसमें आपको और हमको भगवान निमित्त बना रहे हैं, और ये आपकी हमारी बातें भगवान सुन सुन करके राजी हो रहे हैं। ये भगवान की दया है क्या? भगवान अपने राजी होने के लिए और लोगों के बीच में भी ऐसी बात करवा सकते थे और करवाते ही होंगे, अपने को क्या पता। पर आज अपने जो बातें कर रहे हैं ये भगवान की दया है। लेख लिखते हैं, लेख पढ़ते हैं, लेख सुनते हैं, ये भगवान की अपार दया है, कृपा है। अच्छे अच्छे ग्रंथ देखने को मिलते हैं, शास्त्रों की बातें मिलती, भगवान की दया है। मैं तो भगवान की दया के अंदर डूब रहा हूं, ऐसा देखना चाहिए। जैसे कोई समुद्र में डूबता है तो सिर पर पानी, पैर के नीचे पानी, पानी दाई तरफ पानी, बाई तरफ पानी, पीठ पीछे पानी, पानी 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 है। ऐसे आदमी को देखना चाहिए, मेरे तरफ ऊपर नीचे आगे बाहे दाएं पीछे सब जगह भगवान की दया ही दया, दया ही दया, दया ही दया है। लोग मेरे में जितनी श्रद्धा करते हैं, मैं उस श्रद्धा के लायक नहीं हूं, परंतु इसमें मैं भगवान की दया समझता हूं कि देखो भगवान इन लोगों के माध्यम से मेरे में श्रद्धा करवाकर मुझे ये उपदेश देना चाहते हैं कि तू अच्छा बन, इनकी श्रद्धा के योग्य बन, ये जैसी श्रद्धा करते हैं उससे नीचे मत उतर। इसमें भगवान की दया मानता हूं। कितनी बढ़िया बात, ये अच्छा समझते हैं तो ये कितने अच्छे आदमी हैं जो मेरे को अच्छा मानते हैं। अब मुझे इनके इनके अच्छा मानने पर अच्छा ही होना है, इस अच्छाई से नीचे नहीं उतरना है, नहीं तो इनके साथ धोखा हो जाएगा। मैं धोखा देने के लिए थोड़े ही जन्मा हूं, भगवान ने मुझे धोखे के लिए थोड़े ही भेजा है, भगवान ने तो मुझे आगे बढ़ने के लिए भेजा है। और लोग मुझे अच्छा मानते हैं, और यदि मैं अच्छा नहीं होता हूं तो लोगों को धोखा देता हूं, भगवान को धोखा देता हूं, इसलिए लोग मुझे अच्छा मानते हैं, श्रद्धा करते हैं। इसमें भगवान की दया है कि जो मुझे अच्छा बना रहे, जो मेरे से प्रेम करता है, मेरे अंदर उसमें प्रेम का व्यवहार करूं, ऐसी मेरे में क्या महत्ता है। उस समय यही लगता है कि देखो ये मेरे से प्रेम करता है, मैंने तो इससे प्रेम नहीं किया, ये कितना महान है। मेरी तो महिमा तब बने जब ये मेरे से प्रेम न करे और तब भी मैं प्रेम करूं, तब तो मेरा कोई व्यवहार बने, लेकिन ऐसा मैं करता नहीं। आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको अपना कल्याण करना है तो आप लोगों को सबके अंदर भगवान की भावना रखते हुए सबके व्यवहार को भगवान की दया समझो। चाहे कोई आपसे लड़ता हो, चाहे कोई झगड़ता हो, चाहे कोई आपकी बुराई करता हो, चाहे आपकी कोई भलाई करता हो, चाहे कोई आपका मान करता हो, चाहे कोई अपमान करता हो, उसमें ढूंढो कि भगवान कहाँ है, भगवान की दया कहाँ है, दया कहाँ है। हम जितना अनुमान लगा नहीं सकते उससे अनंत गुणा, अनंत गुणी दया भगवान हम पर करते हैं, हम समझ नहीं सकते। इतनी अनंत गुणी दया है भगवान की, हमारी बुद्धि में वो दया समा ही नहीं सकती। क्या चलू के अंदर समुद्र समा जाता है? हमारी बुद्धि में कहां भगवान की दया समाएगी। छोटे से एक शीशे में ये आकाश का प्रतिबिंब नहीं समा सकता, इतने अधिक दया करने वाले भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं। बस उनकी दया मानते ही रहना चाहिए, मानते ही रहना चाहिए। नारायण नारायण नारायण, वो भगवान की कृपा है अपने पर, आप पर, हम पर, सब पर। 1946 में जो प्रवचन दिया सेठ जी ने, कितना वर्ष हो गया, 68 वर्ष पहले, जन्म ही नहीं हुआ उस समय की बातें आज अपने सामने ऐसे लगता है जैसे सेठ जी खुद अपने को बोल रहे हैं और सेठ जी बता रहे हैं ये कहां से लेख आना, कैसे जो है भेजना और कैसे आना, ये भगवान की कृपा हुई है। जन्म ही नहीं हुआ और उस समय की सेठ जी की बातें अपने को ये मिल रही है। सेठ जी ने साफ ही लिख दिया, लेख लिखते हैं, लेख पढ़ते हैं, लेख सुनते हैं, इनके ऊपर भगवान की बड़ी दया है, दया ही दया है, दया ही दया है। और देखो इन लेखों को अपन तो यहाँ सामान्यतया चर्चा करते हैं, बोल देते हैं, कैसेट तैयार करते हैं, दो महीने में यहाँ ये तैयार करते हैं, बाहर देखो तो इतने लोग मांगते हैं इसको, ये सेठ जी वाले लेख देखो, सेठ जी वाले लेख देखो। अभी पावा में कार्यक्रम था तो वहां मैं गाड़ी में बैठा, वहां ये चल रही थी, यही कैसेट चल रही थी, तो सोचा तो वही आवाज तो मेरी थी, एक क्षण के लिए ध्यान गया कि इतनी बढ़िया बात तो मैं कह नहीं सकता हूं, इतनी बढ़िया बात मेरे पैदा ही नहीं होती है। उस समय ध्यान नहीं गया कि सेठ जी का ही लेख है क्या, तो उनसे मोटर चलाने वालों से पूछा कि आ कैसेट के कटों ली, मैं गया कि जयदयाल जी गोविंद कर पहले खरीदोड़ी ही मारी बाल लगाऊ हरदम सुनू। अब बात बैठी गांव के अंदर, कलकत्ता बंबई में तो अलग बात है, गांव के अंदर ये कैसेट काम आती है। भगवान की कोई आप पर हम पर सब पर कोई विशेष दया है।